ओशो रेडियो के हिंदी कार्यक्रम में हमारा सादर अभिनंदन स्वीकार करें।
ओशो ने कहा, ध्यान के मार्ग पर केवल दो कठिनाइयां हैं, एक है अहंकार और दूसरा है लगातार बड़बड़ाने वाला वाचाल मन। पिछले एपिसोड में हमने अहंकार पर ओशो की देशना सुनी थी। आज के इस एपिसोड में हम दूसरी बाधा वाचाल मन पर ओशो की देशना सुनेंगे।
हर युग में, हर युग में तुम जैसों को आना पड़ेगा। हर युग में तुम जैसों को आना
संसार के छोड़ने के पक्ष में नहीं हूं, मन को ही रूपांतरित करना है। और तुम्हारे सूत्र साफ कह रहे हैं कि मन कारण है। काश हमने ये समझा होता और मन को ही कारण समझ के रूपांतरित किया होता तो आज इस देश की ऐसी दुर्गति न होती, ये इतना पाखंडी न होता जितना ये पाखंडी है। शायद पृथ्वी पर कोई ऐसा पाखंड नहीं है जैसा हमारे देश में। धन का विरोध करेंगे और सारे शास्त्र समझा रहे हैं कि धन का दान करो, दान ही पुण्य है, दान ही धर्म है, और धन है पाप। पाप से कैसे पुण्य हो जाता है, यह भी बड़े आश्चर्य की बात है। फिर हिंदू कहते हैं कि दान देना तो ब्राह्मण को, क्या ब्राह्मण से पाप करवाना है? और जैन कहते हैं कि दान देना तो जैन ऋषि मुनियों को, और बौद्ध कहते हैं दान देना तो बौद्ध भिक्षुओं को, और धन को तीनों कहते हैं पाप, और पाप के लिए ही दान मांग रहे, और इसकी भी वर्जना करते हैं कि दूसरों को दान मत देना क्योंकि वो दान व्यर्थ जाएगा। धन है पाप, तो एक बात तो तय है कि अगर धन पाप है तो ब्राह्मणों को पाप करने का उपाय मत देना, भूल के मत देना, भ्रष्ट करना है ब्राह्मणों को। मगर हम भी अंधे हैं, धन को पाप भी मानते हैं और धन को दान भी करते हैं और दान को पुण्य मानते हैं। अब पाप से पुण्य को निकाल रहे हो, जालसाजी कर रहे हो, षड्यंत्र रच रहे हो, इसलिए इस देश में सबसे ज्यादा धन लोलुप हम हैं, सबसे ज्यादा काम लोलुप हम हैं। खजुराहो और कोणार्क जैसे मंदिर हमने बनाए, दुनिया में किसी जाति ने नहीं बनाए, और हमारे शास्त्रों में पंडितों ने इस तरह की अश्लील कहानियां लिखी कि कोई फिल्म इतनी अश्लील न बनी है न बन सकती। मगर धर्म के नाम पर चलती हो बात तो अंगीकार है, तो स्वीकार है। हमने धर्म के नाम पर वैश्यावृत्ति चलाई, देवदासियां बनाई, देवदासी हो गई, करेगी वैश्यागिरी, लेकिन मंदिर में करेगी। अब मंदिर को भी वैश्यालय बना दिया और अब यह काम पुण्य का हो गया, अब इसमें कुछ पाप ना रहा। हम पापों को पुण्यों में बदलने में बड़े होशियार हैं, मगर इस सबके पीछे जाल का, इस सारे उपद्रव का कारण क्या है? कारण यह है कि हम ठीक ठीक समझ नहीं पाए। जिन्होंने जाना उन्होंने कुछ और कहा, और जिन्होंने हमें समझाया उन्होंने कुछ और कहा। इस सूत्र के अनुवाद में भी चिदानंद तुम ख्याल करो, तुम्हें पता चल जाएगा कि कहां से भ्रांतियां घुस जाती। सूत्र का अनुवाद है, मन ही मनुष्यों के बंधन और मोक्ष का कारण है, जो मन विषयों में आसक्त होगा वह बंधन का, और जो विषयों से परांगमुख होगा वह मोक्ष का कारण होता। ये परांगमुख कहां से आ गया? मूल सूत्र में कहीं भी नहीं। मूल सूत्र है मन एव मनुष्यानाम कारणम बंध मोक्षयो। संस्कृत जानना भी जरूरी नहीं, मैं तो संस्कृत जानता नहीं। मनुष्य के बंधन और मोक्ष का कारण मन है। बंधाए विषयासक्तम, विषय में आसक्त रहना बंधन है। मुक्तये निर्विषयम स्मृतम, और जब तुम्हारी स्मृति विषय से मुक्त हो जाए, शून्य हो जाए, तो मोक्ष। इसमें परांगमुख होना कहां से आया? परांगमुख में तो भगोड़ापन आ जाएगा, वही रणछोड़दास जी। परांगमुख यानी पीठ कर दो, भाग जाओ, पीठ दिखा दो, मुंह फेर लो। इस तरह की गलत व्याख्या का परिणाम यह हुआ कि इस देश में लाखों स्त्रियां पतियों के होते विधवा हो गईं, क्योंकि वो परांगमुख हो गए। और इसका विरोध भी ना कर सकी क्योंकि ये सब धर्म के नाम पर हो रहा था। उन्हीं पतियों के चरण भी छुए उन्होंने क्योंकि वो महात्मा हो गए थे, हालांकि उनको दयनीय कर गए थे, उनको भिकमंगा कर गए थे, उनका महात्मापन महंगा पड़ा था स्त्रियों के लिए। अब उनकी स्त्रियां या तो भीख मांगेंगी या आटा पीसेंगी या वैश्यागिरी करेंगी, क्या होगा? उनके बच्चे अनाथ हो गए, भिखारी होंगे, चोरी करेंगे, लुटेरे बनेंगे, पता नहीं क्या होगा। करोड़ों करोड़ों लोगों का जीवन विषाक्त हुआ है परांग मुक्ता के कारण, और सूत्र में कहीं परांग मुक्ता नहीं। सूत्र तो बड़ा सीधा साफ है, निर्विषय चित्त, जिस चित्त में विषयों की तरंगें नहीं उठती। और विषयासक्तम का भी अर्थ हमने गलत किया। विषय में आसक्ति का यह अर्थ नहीं होता कि विषय से भाग जाओ, क्योंकि भागने से आसक्ति नहीं मिटेगी। अगर ऐसा होता तो गरीबों को महलों में कोई आसक्ति ना होती, अगर ऐसा होता तो गरीबों को धन में कोई आसक्ति ना होती, अगर ऐसा होता तो दीन दरिद्र धन्यभागी थे, अभागे थे वे जो दीन दरिद्र नहीं। मगर सच्चाई उल्टी है, सच्चाई यह है कि धन के अनुभव से आदमी की आसक्ति छूटती है और विषय के अनुभव से विषय से मुक्ति होती, क्योंकि अनुभव कर कर के पाया जाता कुछ भी तो नहीं, हाथ कुछ भी तो नहीं लगता, हाथ खाली के खाली रह जाते, वही झोली खाली की खाली। विषय के अनुभव से आदमी अपने आप निर्विषय होता है, सिर्फ जागरूकता से विषय का अनुभव करना है। बस जागरूकता की शर्त जुड़ जाए तो तुम निर्विषय हो जाओगे। जागरूकता का एक सूत्र समझ लो तो विचार से निर्विचार हो जाओगे, मन से अमन हो जाओगे। राज उल्फत छुपा के देख लिया, राज उल्फत छुपा के देख लिया, दिल बहुत कुछ जला के देख लिया, दिल बहुत कुछ जला के देख लिया, राज उल्फत छुपा के देख लिया, और क्या देखने को बाकी है, और क्या देखने को बाकी है, आपसे दिल लगा के देख लिया, और क्या देखने को बाकी है, आपसे दिल लगा के देख लिया, राज उल्फत छुपा के देख लिया। वो मेरे होके भी मेरे न हुए, वो मेरे होके भी मेरे न हुए, उनको अपना बना के देख लिया, उनको अपना बना के देख लिया, राज उल्फत छुपा के देख लिया। फैज तकमील हम भी हो न सके, फैज तकमील हम भी हो न सके, इश्क को आजमा के देख लिया, इश्क को आजमा के देख लिया, राज उल्फत छुपा के देख लिया, दिल बहुत जला के देख लिया, फैज तकमील हम भी हो न सके, इश्क को आजमा के देख लिया, राज उल्फत छुपा के देख लिया। कोई कभी तकमील नहीं हुआ, फैज तकमील हम भी हो न सके। इस जगत में कोई भी संतुष्ट कभी हुआ है? कोई कभी तकमील हुआ है? कोई कभी पूर्णता को उपलब्ध हुआ है? फैज तकमील हम भी हो न सके, इश्क को भी आजमा के देख लिया। इस जगत के सारे प्यार, सारी प्रीतियां, सारे लगाव, सारी आसक्तियां अनुभव करना जरूरी है, अनुभव के सिवाय और कोई मुक्ति नहीं। मन की पीड़ा से गुजरना ही होगा, मन के विषाद को सहना ही होगा, मन की हार को अनुभव करना ही होगा, कोई सस्ता रास्ता नहीं। और भगोड़े सस्ता रास्ता खोज रहे हैं, वो अनुभव से वंचित रह जाएंगे, और जो अनुभव से वंचित रह जाएगा वो मुक्त नहीं हो सकेगा, उसके भीतर वासना दबी ही रह जाएगी, और दबी हुई वासना और भी खतरनाक है, क्योंकि उभरेगी, बार बार उभरेगी, फिर उभरेगी, तुम दबाओगे और उभरेगी, इधर से दबाओगे उधर से उभरेगी, एक दरवाजा बंद करोगे दूसरा दरवाजा खोलेगी, और हर दरवाजा पहले दरवाजे से ज्यादा सूक्ष्म होगा। अच्छा यही है कि वासना को उसके सहज प्राकृतिक रूप में जान लिया जाए, पहचान लिया जाए, मुक्त हो जाना कठिन नहीं है। वासना से मुक्त हो जाना कठिन नहीं है, लेकिन दमित वासना से मुक्त होना बहुत कठिन है। मुझसे पहली सी मोहब्बत मेरे महबूब न मांग, मुझसे पहली सी मोहब्बत मेरे महबूब न मांग, मुझसे पहली सी मोहब्बत मेरे महबूब न मांग। मैंने समझा था कि तू है तो दरख्शां है हयात, मैंने समझा था कि तू है तो दरख्शां है हयात, तेरा गम है तो गमे दहर का झगड़ा क्या है, मैंने समझा था कि तू है तो दरख्शां है हयात, तेरा गम है तो गमे दहर का झगड़ा क्या है, तेरी सूरत से है आलम में बहारां और शबाब, तेरी सूरत से है आलम में बहारां और शबाब, तेरी आंखों के सिवा दुनिया में रखा क्या है, तेरी आंखों के सिवा दुनिया में रखा क्या है, तू जो मिल जाए तो तकदीर में रूह आ जाए, तू जो मिल जाए तो तकदीर में रूह आ जाए, तेरी आंखों के सिवा दुनिया में रखा क्या है, तू जो मिल जाए तो तकदीर में रूह आ जाए, क्यों न था मैंने फकत चाहा था यूं हो जाए, मुझसे पहली सी मोहब्बत मेरे महबूब न मांग, मुझसे पहली सी मोहब्बत मेरे महबूब न मांग, अनगिनत सदियों के तारीख बहीमाना तलिश रेशमों अतलसों कमखाब में बुनवाए हुए, जहां बजा बिकते हुए कूचा और बाजार में जिस्म, खाक में लिथरे हुए खून में नहलाए हुए, लौट जाती है उधर को भी नजर क्या कीजे, लौट जाती है उधर को भी नजर क्या कीजे, अब भी दिलकश है तेरा हुस्न मगर क्या कीजे, अब भी दिलकश है तेरा हुस्न मगर क्या कीजे, और भी दुख है जमाने में मोहब्बत के सिवा, और भी दुख है जमाने में मोहब्बत के सिवा, राहतें और भी हैं वसल की राहत के सिवा, राहतें और भी हैं वसल की राहत के सिवा, मुझसे पहली सी मोहब्बत मेरे महबूब न मांग, मुझसे पहली सी मोहब्बत मेरे महबूब न मांग। तुम जिंदगी को अनुभव करो, उसके सारे फूल उसके सारे कांटे, उसके सारे दिन उसकी सारी रातें, उसके सारे सुख उसके सारे दुख चुनाव नहीं किया जा सकता। कोई ये कहे कि मैं तो फूल ही फूल का अनुभव करूंगा कांटों का नहीं, कि मैं तो दिन ही दिन जीऊंगा रातें नहीं, कि मैं तो सफलताएं ही भोगूंगा विफलताएं नहीं, तो ऐसा व्यक्ति जीवन के अनुभव से वंचित रह जाएगा। ये तो जीवन के दोनों पहलू हैं। यहां हर चीज जो आशा में शुरू होती निराशा में परिणित हो जाती, यहां हर सुबह सांझ होती, यहां जिंदगी के सब सुख धीरे धीरे कड़वे हो जाते हैं और दुख बन जाते हैं। ये सारा अनुभव जरूरी है, यही अनुभव पकाता है। इसी अनुभव की आंच में जो पकता है एक दिन मन से मुक्त हो पाता है, वह पक जाना ही मुक्ति है। मन एव मनुष्यानाम कारणम बंध मोक्षयो। मन है कारण बंध का और मोक्ष का। कच्चा मन बंध का कारण, पक गया मन मोक्ष का कारण। मगर मन पके कैसे? संसार की आंच के सिवाय मन को पकने का और कोई उपाय नहीं। इसलिए तो संसार है, इसलिए तो इस संसार को परमात्मा के द्वारा दी गई चुनौती समझो। ये परमात्मा के द्वारा दी गई एक परीक्षा है। यहां सभी बड़ी आशाओं से यात्रा शुरू करते, कुछ बुरा नहीं, और यहां सभी आज नहीं कल, कल नहीं परसों असफलताओं के गड्ढों में गिर जाते। मुझसे पहली सी मोहब्बत मेरे महबूब ना मांग। मैंने समझा था कि तू है तो दरख्शा है हयात, तेरा गम है तो गमे दहर का झगड़ा क्या है, तेरी सूरत से है आलम में बहारा और सबाब, तेरी आंखों के सिवा दुनिया में रखा क्या है, तू जो मिल जाए तो तकदीर में रूह आ जाए, क्यों न था मैंने फकत चाहा था यूं हो जाए, मुझसे पहली सी मोहब्बत मेरे महबूब ने मांग। अनगिनत सदियों के तारीख बहिमाना तलिश रेशमों अतलसों कमखाव में बुनवाए हुए, जां बजां बिकते हुए कूचाओ बाजार में जिस्म, खाक में लिथरे हुए खून में नहलाए हुए, लौट जाती है उधर को भी नजर क्या कीजिए, लौट जाती है उधर को भी नजर क्या कीजिए, अब भी दिलकश तेरा हुस्न मगर क्या कीजिए, अब भी दिलकश तेरा हुस्न मगर क्या कीजिए, और भी दुख है जमाने में मोहब्बत के सिवा, राहतें और भी हैं वसल की राहत के सिवा, मुझसे पहली सी मोहब्बत मेरे महबूब न मांग, मुझसे पहली सी मोहब्बत मेरे महबूब न मांग। लेकिन मोहब्बत को जानना होगा, पहचानना होगा, जीना होगा, भोगना होगा। इसलिए मैं अपने सन्यासी को भोग से भागने को नहीं कहता, भोग मैं पकने को कहता हूं, भोग में ही योग का फल पकता है। यह विरोधाभास है, लेकिन जिंदगी के सारे राज विरोधाभासों में। यहां जो भूला नहीं करता वह कभी सीखता नहीं, जो भूलों से बचेगा सीखने से बच जाएगा। अगर सीखना हो तो भूलें करना, डरना नहीं। हां, एक ही भूल दोबारा मत करना। बंधाय विषयासक्तम, विषय में आसक्ति बंधन है। आसक्ति कैसे छूटेगी? जबरदस्ती ना छुड़ा सकोगे। छुड़ा छुड़ा के भागोगे आसक्ति लौट लौट आएगी, क्योंकि बाहर नहीं है आसक्ति, भीतर है। कैसे छूटेगी? तुम्हें दिखाई पड़ रहा है कि ये हीरा है और तुम भाग खड़े हुए, तो तुम्हारे सपनों में आएगा हीरा, तुम्हें पुकारेगा, तुम्हें खींचेगा। तुम देख ही लो कि ये हीरा नहीं है, किसी और कीमत मान लेना। अपने अनुभव के सिवाय और कोई जानना नहीं है, न कभी था न कभी होगा। तुम इस हीरे को परख ही लो, इस हीरे को उठा ही लो, इसका हार बना ही लो। जब ये तुम्ही को पत्थर हो जाएगा तो यूं गिर जाएगा जैसे सूखे पत्ते वृक्षों से गिर जाते। न वृक्ष को छोड़ना पड़ता, न उन्हें छूटना पड़ता। और जब इस संसार में जो व्यर्थ है वो सूखे पत्तों की तरह गिर जाता है, तो जो सार्थक है उसके नए अंकुर तुम्हारे भीतर उगाते। बंधन हमारा अज्ञान है, मगर ज्ञान कैसे हो? अनुभव से ही होगा। ठोकरें खानी होंगी, दर दर की ठोकरें खानी होनी होंगी। बहुत बार गिरना पड़ेगा, बहुत बार उठना पड़ेगा। उठ उठ के ही तो तुम सीखोगे चलना। अगर छोटे से बच्चों को तुम्हारे महात्मा मिल जाएं और कहेंगे बेटा गिरना मत, और बच्चा सोच ले तय कर ले कि गिरूंगा नहीं, तो फिर घिसटता ही रहेगा जिंदगी भर, कभी खड़ा ना हो पाएगा, चल ही ना पाएगा, क्योंकि गिरने का डर चलने ना देगा। जो चलेगा बच्चा उसको गिरना ही पड़ेगा। तो बच्चे सौभाग्य से मां बाप की सुनते ही नहीं, मां बाप तो बहुत कहते हैं कि बेटा संभल के संभल के, मगर बेटे के भीतर तो प्रकृति की ऊर्जा तूफान ले रही है, वो खड़ा होना चाहता है। एक दफा बच्चा खड़ा हो जाता है, दो कदम चल लेता है कि उसको एकदम पागलपन चढ़ जाता है, चलने ही चलने की धुन रहती है उसको, जरा मौका पाया कि चलूं, गिर गिर पड़ता है, घुटने टूट जाते हैं, लहू लुहान हो जाता है, मगर फिर उठाता है। अगर सयाना हो तो पड़े ही रह जाए, अगर सयानों की मान ले तो बचपन में ही बूढ़ा हो जाए, और बचपन में ही बूढ़ा हो जाना दुर्भाग्य, वैसा ही दुर्भाग्य जैसे कुछ बूढ़े बुढ़ापे में भी बचकाने रह जाते। न बच्चों को बूढ़ा होने की जरूरत है, न बूढ़ों को बचकाना रहने की जरूरत है, जिंदगी में सहज विकास होना चाहिए, एक संतुलन होना चाहिए। सीखो, सीखने का एक ही उपाय, भूल से मत डरना, आसक्ति को अनुभव करो, कांटे चुभेंगे ये मैं कह देता हूं, मगर मेरे कहने से कि कांटे चुभेंगे तुम रुकना मत, क्योंकि मेरी बात तुम्हारे किस काम की, तुम्हें कांटे चुभने चाहिए, वो कांटे की चुभन तुम्हारे जीवन के पकाव में अनिवार्य है, अपरिहार्य है, बंधा है विषयासक्तम, विषयों से वे ही बंधे रह जाते हैं जिन्होंने ठीक ठीक उनका अनुभव नहीं किया, जिन्होंने अनुभव कर लिया वे तो मुक्त हो जाते। मुक्ते निर्विषयम स्मृतम, कौन होता है मुक्त, जिसकी स्मृति से, जिसके अंत है स्मरण के लोक से विषयों की खींचतान समाप्त हो जाती, जिसने धन को भोगा वो धन से मुक्त हो जाता है, जिसने काम को भोगा वो काम से मुक्त हो जाता है। मुक्त होने का एक ही उपाय है, जी लो सारा कड़वा मीठा अनुभव ले लो, और समय रहते ले लेना, नहीं तो पीछे बड़ा पछतावा होता है। जब समय था तब ज्ञान की बातों में उलझ गए, और उधार ज्ञान तो उधार ही रहेगा। अब जिसने भी इस सूत्र का हिंदी में अनुवाद किया चिदानंद, उसने समझा ही नहीं, उसने बात को बिगाड़ दिया, उसने कह दिया जो विषयों से परांगमुख होगा वह मोक्ष का कारण होगा, परांगमुख जो होगा वह तो बंधा ही रह जाएगा, बुरी तरह बंधा रह जाएगा, विकृत हो जाएगा, मोक्ष नहीं मिलेगा। हां, विषयों का जो अतिक्रमण करता है, विषयों को जान लेता, पहचान लेता, उसके भीतर ही अब इतनी बात साफ हो जाती, स्वच्छ हो जाती कि कुछ भी सार नहीं। वो चिल्लाता भी नहीं फिरता कि विषय असार है, जो अभी चिल्ला रहा है कि विषय असार है, जो दूसरों को समझा रहा है कि सावधान धन से पद से, सावधान स्त्रियों से, स्त्री नरक का द्वार है, समझ लेना एक बात पक्की कि अभी ये स्वयं मुक्त नहीं हुआ है, नहीं तो इसे क्या स्त्री नरक का द्वार दिखाई पड़ेगी। कहानी मैंने सुनी कि मीरा जब वृंदावन पहुंची तो वृंदावन में जो कृष्ण का सबसे प्रमुख मंदिर था, उसका जो पुजारी था, उसने 30 वर्षों से किसी स्त्री को नहीं देखा था, वो बाहर नहीं निकलता था और स्त्रियों को मंदिर में आने की मनाही थी। द्वारपाल थे जो स्त्रियों को रोक देते थे। कैसी अजीब दुनिया है। कृष्ण का भक्त और कृष्ण के मंदिर में स्त्रियों को ना घुसने दे। और कृष्ण का जीवन किसी पलायनवादी सन्यासी का जीवन नहीं, मेरे सन्यासी का जीवन। 16,000 स्त्रियों के बीच ये नृत्य चलता रहा कृष्ण का। अगर नरक ही जाना है तो कृष्ण जितने गहरे नरक में गए होंगे तुम क्या जाओगे, कैसे जाओगे? इतनी सुविधा तुम ना जुटा पाओगे, इतनी लंबी सीढ़ी ना लगा पाओगे। 16,000 पायदान, अरे एक आध पायदान दो पायदान बिठा लिए उतने में तो जिंदगी उखड़ जाती। एक आध दो नरक के द्वार खोज लिए इतना ही तो काफी। उन्हीं दोनों के बीच में ऐसी घिसान ऐसी पिटान हो जाती। 16,000 स्त्रियां, मगर ये सज्जन जो पुरोहित थे इनकी बड़ी प्रतिष्ठा थी महात्मा की तरह। प्रतिष्ठा का कुल कारण इतना था कि वो स्त्री को नहीं देखते थे। हम अजीब बातों को आदर देते, हम मूढ़ताओं को आदर देते, हम रुग्णताओं को आदर देते, हम विक्षिप्तताओं को आदर देते। हमने कभी किसी सृजनात्मक मूल्य को आदर दिया ही नहीं। हमने ये नहीं कहा कि इस महात्मा ने एक सुंदर मूर्ति बनाई थी, कि एक सुंदर गीत रचा था, कि इसने सुंदर वीणा बजाई थी, कि बांसुरी पर आनंद का राग गाया था। नहीं, ये सब कुछ नहीं। इसने स्त्री नहीं देखी 30 साल तक। बहुत गजब का काम किया था। मीरा आई, मीरा तो इस तरह के व्यर्थ के आग्रहों को मानती नहीं थी। थक्कड़ थी वो, नाचती हुई वृंदावन के मंदिर में पहुंच गई। द्वारपालों को सचेत कर दिया गया था, क्योंकि मंदिर का प्रधान बहुत घबराया हुआ था कि मीरा आई है, गांव में नाच रही है, उसके गीत की खबरें आ रही हैं, उसकी मस्ती की खबरें आ रही हैं, कृष्ण की भक्त जरूर मंदिर आएगी। तो द्वार पर पहरेदार बढ़ा दिए थे, नंगी तलवारें लिए खड़े थे कि रोक देना उसे, भीतर प्रवेश करने मत देना, दीवानी पागल है सुनेगी नहीं, जबरदस्ती करना पड़े तो करना, मगर मंदिर में प्रवेश नहीं करने देना। यही सज्जन मालूम होता है स्वामीनारायण संप्रदाय में पैदा हो गए श्री प्रमुख स्वामी के नाम से। स्त्रियां नहीं देखते, हवाई जहाज पे चलते हैं तो उनके चारों तरफ एक बुरका ओढ़ा दिया जाता है, क्योंकि एयर होस्टेस वगैरह उनको देख के कहीं इनको भ्रम हो जाए कि उर्वशी मेनका अप्सराएं आ गईं, क्या हो रहा है, क्या इंद्र डर गया श्री प्रमुख स्वामी से। छोटे मोटे स्वामी नहीं, श्री प्रमुख स्वामी, नाम भी क्या चुना है। यही वही सज्जन मालूम होते। मीरा नाचती गई, द्वार पर नाचने लगी, भीड़ लग गई। नाच ऐसा था, ऐसा रस भरा था कि मस्त हो गए द्वारपाल भी, भूल ही गए कि रोकना। तलवारें तो हाथ में रही मगर स्मरण न रहा तलवारों का। और मीरा नाचती हुई भीतर प्रवेश कर गई। पुजारी पूजा कर रहा था, मीरा को देख के उसके हाथ से थाल छूट गया पूजा का, झनझना के थाल नीचे गिर पड़ा, चिल्लाया क्रोध से कि स्त्री तू भीतर कैसे आई, बाहर निकल। मीरा ने जो उत्तर दिया बड़ा प्यारा है। मीरा ने कहा कि मैंने तो सुना था कि एक ही पुरुष है परमात्मा कृष्ण, और हम सब तो उसकी ही सखियां हैं, मगर आज पता चला कि दो पुरुष हैं, एक तुम भी हो। तो तुम सखी नहीं हो, तुम क्यों ये श्रृंगार किए खड़े हो, निकलो बाहर, इस मंदिर का पुरोहित होने का तुम्हें कोई अधिकार नहीं। ये पूजा की थाली अच्छा हुआ तुम्हारे हाथ से गिर गई, ये पूजा की थाली तुम्हारे हाथ में होनी नहीं चाहिए। तुम्हें अभी स्त्री दिखाई पड़ती, 30 साल से स्त्री नहीं देखी, तो तुम मुझे पहचान कैसे गए कि स्त्री? यूं ना देखी हो, सपनों में तो बहुत देखी होगी, जो दिन में बचते हैं वो रात में देखते हैं, इधर से बसते हैं तो उधर से देखते हैं, कोई ना कोई उपाय खोज लेते। और मीरा ने कहा कि जो कृष्ण की मूर्ति है इसके बगल में राधा की मूर्ति है, ये स्त्री नहीं। और अगर तुम ये कहो कि मूर्ति तो मूर्ति है, तो फिर तुम्हारे कृष्ण की मूर्ति भी बस मूर्ति है। क्यों मूर्खता कर रहे हो? किस लिए ये पूजा का थाल और ये अर्चना और ये धूप दीप और ये सब उपद्रव, ये सब आडंबर? और अगर कृष्ण की मूर्ति मूर्ति नहीं है, तो फिर ये राधा, राधा पुरुष है, तो मेरे आने में क्या अड़चन हो गई? मैं संभाल लूंगी अब इस मंदिर को, तुम रास्ते पर लगो। मीरा ने ठीक कहा, जीवन को अगर कोई पलायन करेगा तो परिणाम बुरे होंगे, परांगमुख मत होना, जियो जीवन को, क्योंकि जीने से ही मुक्ति का अपने आप द्वार खुलता है। मन एव मनुष्यानाम कारणम बंध मोक्षयो, बंधाय विषयासक्तम मुक्तई निर्विषयम स्मृतम। चिदानंद, सूत्र तो प्यारा है, सूत्र तो अद्भुत है, बहुत रस भरा है, मगर व्याख्याओं से जरा सावधान रहना, ये अनुवाद तक गलत है। मैं संस्कृत नहीं जानता, याद रहे, लेकिन मैं उपनिषद जानता हूं, मेरा अपना अनुभव मैं जानता हूं, इसलिए मैं फिक्र नहीं करता भाषा वगैरह की। भाषा से मुझे क्या लेना देना? अगर मेरी अनुभूति के अनुकूल पड़ता है तो ठीक, अगर नहीं अनुकूल पड़ता तो गलत। मेरे लिए और दूसरा कोई मापदंड नहीं। प्रत्येक को अपनी अनुभूति के ही मापदंड पर, अपनी अनुभूति की कसौटी पर ही कसना चाहिए, तभी तुम जीवन में असार को सार से अलग कर पाओगे, निरक्षीर विवेक कर पाओगे। यह सूत्र प्यारा है, मगर व्याख्याओं से सावधान।
नुम तननु तदारतानि दे दीं तनादेरेना,
नुम तननु तदारतानि दे दीं तनादेरेना,
नुम तननु तदारतानि दे दारे तानी दे
ओशो कहते हैं, ध्यान के मार्ग पर दूसरी बाधा है तुम्हारा लगातार बड़बड़ाने वाला मन। तुम एक मिनट के लिए भी चुप नहीं बैठ सकते, मन बोलता चला जाता है। संगत असंगत, अर्थपूर्ण अर्थहीन विचार चलते रहते हैं। यह ट्रैफिक लगातार चलता रहता है और सदा ही भीड़ भाड़ बनी रहती है।
ध्यान का अर्थ है शब्दों के बिना जीना, भाषा रहित होकर जीना।
ओशो कहते हैं, मन हर अस्तित्वगत चीज को एक शब्द में अनुवादित कर लेता है। हर चीज शब्द में बदल दी जाती है। ये शब्द अवरोध खड़ा करते हैं, ये शब्द एक कारागृह बन जाते हैं। चीजों को, अस्तित्व को शब्दों में रूपांतरित करने की ओर का यह जो प्रवाह है, यही अवरोध है। ध्यानपूर्ण चित्त के लिए यह बाधा है।
तो ध्यानपूर्ण विकास की ओर पहली अनिवार्यता है अपने सतत शब्दीकरण के प्रति सजग होना और उसे रोकने में सक्षम होना।
जैसे सूर्योदय है, उसे देखने और उसे शब्द देने के बीच का जो अंतराल है, उसका तुम्हें कभी बोध नहीं होता। तुम सूर्य को देखते हो, उसको अनुभव करते हो और तत्क्षण उसको शब्द दे देते हो। देखने और शब्द देने के बीच का जो भेद है, वह खो जाता है। उसका कभी अनुभव ही नहीं होता। उस अंतराल में, उस भेद में व्यक्ति को सजग हो जाना चाहिए। उसे इस तथ्य के प्रति सजग हो जाना चाहिए कि सूर्योदय कोई शब्द नहीं है। यह एक तथ्य है, एक उपस्थिति है, एक परिस्थिति है।
मन एक यंत्र ही होना चाहिए, मालिक नहीं।
ओशो कहते हैं, जब तुम सामाजिक प्राणी की तरह जियो तो भाषा के मैकेनिज्म की जरूरत है। उसके बिना तुम समाज में नहीं जी सकते। लेकिन जब तुम अस्तित्व के साथ अकेले हो तो मैकेनिज्म को बंद कर देना चाहिए। उसको बंद करने की तुम्हारी क्षमता होनी चाहिए। यदि तुम उसे बंद न कर सको तो मैकेनिज्म विक्षिप्त हो गया। यदि वह चालू ही रहे और तुम उसे बंद न कर सको तो मैकेनिज्म ने तुम्हारी डोर संभाल ली, तुम उसके गुलाम हो गए।
तो ध्यान का अर्थ है मैकेनिज्म पर मालकियत।
चेतना भाषा के पार है, अस्तित्व भाषा के पार है।
मन और मन का भाषाई कार्य अंतिम नहीं है। तुम उसके पार हो और अस्तित्व उसके पार है। चेतना भाषा के पार है, अस्तित्व भाषा के पार है। जब चेतना और अस्तित्व एक हो जाते हैं तो उनका मिलन होता है। इसी अवस्था को ध्यान कहते हैं। चेतना और अस्तित्व के मिलन को ध्यान कहते हैं।
भाषा चेतना को मंद कर देती है।
भाषा की जरूरत है, वह अनिवार्य है, लेकिन फिर तुम्हें हमेशा उसी में नहीं बने रहना चाहिए। ऐसे क्षण भी होने चाहिए जब तुम बस अस्तित्वगत हो रहो और भीतर कोई शब्द न सरक रहे हो, जब तुम बस होते हो। और इसका यह अर्थ नहीं कि तुम्हारा जीवन निष्प्राण हो जाए। तो चेतना होती है और वह अधिक तीव्र, अधिक जीवंत हो जाती है, क्योंकि भाषा चेतना को मंद कर देती है।
मन के विरुद्ध कुछ भी करने की जरूरत नहीं।
तो क्या करना है? प्रश्न संगत है। देखते रहो, रोकने की कोशिश मत करो। मन के विरुद्ध कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। पहली बात, यह काम करेगा कौन? यह तो मन ही मन के साथ संघर्ष करेगा। तुम अपने मन को दो खंडों में बांट लोगे। एक तो वह जो धाक जमाने की, ऊपर चढ़ने की चेष्टा कर रहा है, अपने ही दूसरे खंड को मारने का प्रयास कर रहा है, जो कि अर्थहीन है। यह एक मूर्तापूर्ण खेल है। यह तुम्हें विक्षिप्त कर देगा। मन को या सोच विचार को रोकने की चेष्टा मत करो। उसे बस देखो, उसे होने दो, उसे पूरी स्वतंत्रता दो।
मन को देखने का अर्थ है उसकी ओर गहन प्रेम से, गहन सम्मान से, श्रद्धा से देखो। वह परमात्मा का उपहार है तुम्हें।
गहन श्रद्धा से भरकर देखो। योद्धा मत बनो, प्रेमी बनो। मन के सूक्ष्म संवेगों को देखो, उसके अकस्मात और सुंदर परिवर्तनों को, उसकी छलांगों को देखो, उन चालों को देखो जो मन खेलता चला जाता है, सपने जो वह बुनता है, कल्पना, स्मृति, हजारों प्रक्षेपण जो मन निर्मित करता है। देखो, अलग से, दूर खड़े होकर, बिना उसमें सम्मिलित हुए।
और धीरे धीरे तुम्हें लगने लगेगा, जैसे जैसे तुम्हारा साक्षी भाव गहराता है, तुम्हारा होश गहरा होता है, तो दूरी बनने लगती है, अंतराल आने लगते हैं। एक विचार गया, दूसरा अभी आया नहीं, एक अंतराल है। एक बादल गुजर गया, दूसरा आ रहा है, बीच में अंतराल है।
उन अंतरालों में पहली बार तुम्हें अमन की झलकें मिलेंगी, अमन का स्वाद मिलेगा। इसे झेन का स्वाद कह लो, या ताओ का स्वाद कह लो, या योग का स्वाद कह लो। उन छोटे छोटे अंतरालों में आकाश अचानक स्पष्ट हो जाता है और सूर्य चमकने लगता है।
संसार अचानक चमत्कार से भर उठता है, क्योंकि सभी अवरोध छूट गए, तुम्हारी आंखों पर पर्दा न रहा। तुम स्पष्ट देखते हो, आर पार देखते हो, पूरा अस्तित्व पारदर्शी हो उठता है।
शुरू में तो ये क्षण विरले ही होंगे, बीच बीच में कभी कभार आ जाएंगे, लेकिन वे तुम्हें इसकी झलक दे देंगे कि समाधि क्या है। मौन के छोटे छोटे कुंड आएंगे और विलीन हो जाएंगे, लेकिन अब तुम जानते हो कि तुम ठीक रास्ते पर हो। तुम फिर से देखने लगते हो।
अब तुम विचार और अंतराल दोनों को देखते हो, किंतु अब तुम्हें केवल अंतराल के प्रति आसक्त नहीं होना है, अन्यथा वे अंतराल खो जाएंगे। वे तभी घटेंगे जब तुम तटस्थ होते हो। विचारों और अंतरालों को पूरी स्वतंत्रता से घटने दो, फिर और बड़े बड़े अंतराल आएंगे।
जब बड़े अंतराल आएंगे तो तुम्हारे पास बस संसार में झांकने की ही सुस्पष्टता नहीं होगी। बड़े अंतरालों के साथ तुम में एक नई सुस्पष्टता का प्रादुर्भाव होगा। तुम अंतर जगत में भी झांक पाओगे।
आसक्ति मन के लिए भोजन है कि वह चलता रह सके। अनासक्त साक्षी भाव बिना उसे रोकने का प्रयास किए उसको रोकने का उपाय है। और जब तुम उन आनंदपूर्ण क्षणों का आनंद लेने लगते हो तो तुम में लंबे समय तक उनको बनाए रखने की क्षमता आ जाती है।
अंत में अंततः एक दिन तुम मालिक हो जाते हो। फिर जब तुम सोचना चाहते हो तो सोचते हो। यदि विचार की जरूरत है तो तुम उसका उपयोग करते हो। यदि विचार की जरूरत ना हो तो तुम उसको विश्राम करने देते हो।
ऐसा नहीं कि अब मन नहीं रहता। मन तो रहता है, लेकिन तुम उसका उपयोग कर भी सकते हो और उपयोग नहीं भी कर सकते। अब यह तुम्हारा निर्णय है।
बिल्कुल पांव की तरह, तुम दौड़ना चाहो तो उनका उपयोग कर सकते हो। यदि तुम दौड़ना नहीं चाहते तो बस विश्राम करते हो। पांव तो अब भी हैं। ठीक उसी तरह मन भी हमेशा रहता है।
ओशो कहते हैं, अमन मन के विपरीत नहीं है, अमन मन के पार है। अमन मन को मारकर और नष्ट करके पैदा नहीं होता। अमन तो तब जन्मता है जब तुम मन को इतनी समग्रता से समझ लेते हो कि सोच विचार की कोई जरूरत नहीं रहती। तुम्हारी समझ उसका स्थान ले लेती है।
तो मित्रों, मन ध्यान में कैसे बाधा बन जाता है और उसे समग्रता पूर्वक समझकर कैसे अमन में प्रवेश मिलता है, ओशो से हमने समझा। ध्यान का भारी भरकम लगने वाला रास्ता इतना आसान हो जाता है ओशो की समझ के साथ, जैसे बच्चों का खेल। चुटकी बजाते ही मन का मैकेनिज्म, मन का यंत्र ऑफ और ध्यान ऑन। अभी यहीं ओशो के आशीर्वाद के साथ हमारी शुभकामनाएं आप सभी को और प्यार भरा नमस्कार।
blessed one, one breath, breath of eternity. One song becomes a symphony of hearts beating in harmony with you. Blessed one, one breath, breath of eternity. One song becomes a symphony of hearts beating in harmony with you. Blessed one, one breath.
Harmony with you. Blessed.